अब यहां से दूसरी बात थोड़ा सा समझिए, यह अब आप सबके और मेरे मतलब की बात है। अभी तक मूसा एक सियासी जंग जीत रहे थे, जीत ली। मूसा की जिंदगी में सियासी रंग है, आप पढ़ेंगे। ईसा की जिंदगी में कोई और रंग है। हर नबी का एक डिफरेंट एंगल है। हमारे प्यारे नबी की जिंदगी में सब कुछ जमा हो गया था। खैर, अब काम क्या था कि ये कौम जो कई सालों से गुलाम है, अब इमेजिनेशन में या अपने नोट्स में लिखने के लिए, और ये मैं मोहब्बत में बातें करती हूँ, इसमें कोई मुझे बुरा भी नहीं लगता, आप यहाँ एक जुमला लिख लें, और पाकिस्तान बन गया। ठीक है, बनी इसराइल आजाद हुए, दुश्मन डूब गया, अब बनी इसराइल आजाद हो गए। 14 अगस्त 1947 का दिन है आज का। अब अल्लाह आगे क्या चाहता था इस उम्मत से, कि इस उम्मत की किरदार साजी हो। उस दौर के बनी इसराइल थे या 47 के मुसलमान थे, जो करने का काम था उसके बाद वो क्या था, अब इनको इस किताब से जोड़ो, अब इनको दिखाओ कि एक आजाद जमीन का खित्ता कैसे आबाद करते हैं। अगर 1947 में ये काम भरपूर तरीके से, जिसको कहना चाहिए कि जैसा होना चाहिए ऐसा किया होता, तो आज दुनिया की बड़ी ताकतों में एक ताकत पाकिस्तान होता, मैं आपको अपने ईमान से कह सकती हूँ। जब कौमें जमीन के टुकड़े ले लें, चले उसको भी छोड़ दीजिए, मुल्क को छोड़ दीजिए, आप कहते हैं अल्लाह हमें दीन के काम के लिए कोई जगह दे, जगह दे, जगह दे, अल्लाह ने आपको कहा ले लो ये जगह, अब आप जगह लेकर बैठ गए, ना किरदार, ना साजी, ना कोई बात, ना कोई लेना ना देना, कितने दिन ये जगह चलेगी? इदारे कैसे नाकाम होते हैं, कैसे मस्जिदें बंद होती देखी, कैसे टूटते हैं, किरदार नहीं है। आज हम जमीन के टुकड़े लेना चाहते हैं, किरदार नहीं है। आज मुसलमान के हाथ में वो कुव्वत नहीं है। अब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, चलो अब सब काम खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह फिरौन डूब गया, दुश्मन का खतरा टल गया, वो बेगार रहता था खत्म, इनकी नस्ल कुशी थी, इन पे बड़ा जुल्म था, सब खत्म, अब चलो इस कौम को पढ़ाओ। अभी तौरात नाजिल होने लगी है और आप पढ़ेंगे इन आयतों में इसके लिए फोकस किया जा रहा है, यकसुई चाहिए। कम अज कम हर शख्स अपनी जिंदगी के कुछ साल, कुछ महीने डेडिकेट करे इस काम के लिए कि पहले मैं समझूं तो सही कि मेरा मालिक मुझसे चाहता क्या। कोई कहते मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाऊं, भाई सीखा है? नहीं, टाइम नहीं है। भाई टाइम नहीं है तो मर जाओगे? भाई कुकिंग कर रहे हो, चूल्हा जलाना आता है, पकाना आता है? नहीं, टाइम नहीं है, बस पकाने लगी हूं। आज हमारा ये हाल है, जीना चाहते हैं लेकिन जीने के वो सुनहरी असूल नहीं जानते जो अल्लाह ने इस किताब में दिए हैं, तो बहुत जरूरी है। और यही असूल आप अपनी नस्लों पर रखें, अपने बच्चों की किरदार साजी, उनको इस किताब से जोड़ना, उसको नबी के तरीकों से जोड़ना, ये है असल में अब अगले हिस्से का थीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ववात न मूसा सलासीन लैलतम अतमम ना हबी अश्रु, हमने मूसा अलैहि सलाम को 30 शबो रोज के लिए कोहे सीना पर तलब किया, बाद में 10 दिन का इजाफा और कर दिया। क्यों भाई, दिन बढ़ाए जा सकते हैं, दिल ही नहीं किया मूसा का आने को। आप किसी प्यारे के पास जाते हैं फिर वापस आने को दिल ही नहीं करता, तो क्या करते हैं, चलो ना एक दिन और रह जाओ, चलो अब एक दिन और रह जाओ, अब तो पहले ही टिकटें बुक हुई होती है ना। लेकिन जिससे मोहब्बत होती है क्या उसके जाने के दिन गिन रहे होते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इस दौरे कुरान के खत्म होने के दिन गिन रहे हैं कि जल्दी खत्म हो, शुक्र है आज नवा दिन है, नवा पारा है, रह गए पीछे 21 पारे, जान छुटेगी, अब तो दिल जम गया, अब तो दिल जुड़ गया। यही हुआ, अल्लाह ने मूसा को 30 दिन के लिए बुला लिया, 30वें दिन मूसा कह रहे हैं अल्लाह जी मैं थोड़ा और ना रह लूं, ये दुआ कीजिए, अल्लाह इल्म से ये मोहब्बत है, जो सिर्फ एक महीने का सोच रहा है वो कभी ना सोचे, वो ये कि अल्लाह अब ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक चले और मेरे बाद मेरे सदका जारिया की सूरत में कोई चीजें छोड़ जाऊं, तो 40 दिन का इजाफा हो गया। तो ये तो हम वक्त के मुताबिक चल रहे हैं ना, इसमें जो खजाने हैं आपके लिए, अभी तो बिलीव मी कि आप सिर्फ ऊपर का कवर ले रहे हैं, जब आपने एक एक घूंट भरना है ना इस कुरान को, उस दिन रोना है आपने, उस दिन आपकी आंखें बहेंगी कि ये इतने साल की जिंदगी कहाँ जाया की, और तब रोना इस पे आता है कि अल्लाह किताब तब पकड़ी है जब घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, दिमाग काम नहीं करता, हाथ लिखते नहीं, जोड़ों में दर्द है, क्यों कि जिंदगी तो हमने लोगों को दे दी, काम कर करके थक गए। तो अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमें फोकस कर दे इस किताब के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना। खूबसूरत नुकता है, जब कभी अपने काम से जरा हटे, किसी एक को जिम्मेदार बनाए, वरना क्या होगा, आपके पास सारे जिम्मेदार होंगे। वो कोई किसी की बात है मुझे भूलती नहीं है, कहीं से जा रहे थे तो मैंने कहा जब आप नहीं होते तो आपके पीछे से कौन इंचार्ज होता है, कहा मेरे पीछे से हर बंदा इंचार्ज होता है। ये भी जब तस्किया नहीं हुआ होता तो ऐसा ही होता है। हालांकि होना क्या चाहिए कि मेरे पीछे से हर बंदा ही सुनने वाला होता है कि जो मुझे कहोगे मैं मान जाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को अपने पीछे रखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना। देखिए, गुड मैनेजमेंट का तरीका है कि काम करने वालों को इंस्ट्रक्शंस देते रहो, ठीक काम करना, कर भी रहे हो कि नहीं, मुहासबा करो, क्या सोचा था, क्या कर रहे हो, क्या कहा था, क्या किया। ये डे टू डे करने का काम है। एक दफा कहकर काम छोड़ दें, कभी भी काम पूरे नहीं होते। आप अपनी मासी को एक दफा शुरू में कह दें ये करना है, करेगी? शुरू में जॉब देते हुए कहा था ये सफाई करनी, नहीं, हर रोज नहीं कहते, सर पे खड़े होके कोनों में से कचरा नहीं निकलवाते। ये करना पड़ता है, ये सारी जिंदगी का एक खून जलाने वाला काम है और मूसा अलैहिस्सलाम इसमें बहुत कामयाब दिख रहे हैं। और साथ ही देखिए, मूसा को अंदेशा पहले ही था। अच्छे लीडर को अंदेशे पहले ही आ जाते हैं, सूझने लगता है कि बाद में ये होना है क्या, और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पे ना चलना। और बाद में फिर एक बिगाड़ अभी आने लगा है। क्या पता चला, अच्छे लीडर को पता होता है कि मेरे मंजर से हटने के साथ ही फितने भी खड़े होने हैं। उसमें वही फिर जमा रहेगा जिसका तस्किया होगा, जो अल्लाह के लिए होगा, जो अपने लिए या खुब्बे जा या उब्बे माल में या अपनी जात में होगा, वो उस फितने में बह जाता है। याद रखिए, और मूसा अलैहिस्सलाम की ये इंस्ट्रक्शन हजरत हारून ने पल्ले से बांध ली। इसीलिए देखिएगा अभी आगे क्या कहते हैं। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचे और उसके रब ने उससे कलाम किया। रशकार है हजरत मूसा पे, मूसा से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया। तो मैं आपसे कहूं कि मुझे तो आप पे रशकार है और अपने ऊपर आ रहा है कि अल्लाह हमसे इस वक्त कलाम नहीं कर रहा। किसी ने कहा कि जब तुम कुरान पढ़ते हो ना तो अल्लाह तुमसे कलाम करता है, क्योंकि बल हुआ कलाम अल्लाह, और जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तो तुम अल्लाह से कलाम करते हो। तो अल्लाह से दुआ कीजिए हमें इस वक्त इस लज्जत को लेने वाला बनाए। तो इसने इल्तजा की, ऐ रब मुझे याराए नजर दे कि मैं तुझे देखूं। ख्वाहिश होती है ना, जब बंदा सामने नहीं होता ना तो दिल करता है अब शक्ल कब देखेंगे। और कभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसी बातें करें तो मुझे यही आयतें याद आती हैं। कभी कहीं जाऊं और कोई के सुनते थे, पढ़ते थे, देखने की ख्वाहिश थी, कोई रोता है, कोई धोता है, ऐसी बेकार चीजें, मैं उनको कहती हूँ देखिए उस वक्त को याद कीजिए जब आप अल्लाह को मिलेंगे। जब अपने किसी उस्ताद को, किसी साथी को, किसी दीन की खिदमत करने वाले को मिलने को दिल करे, उस वक्त ये कहें कि अल्लाह तो मुझे अपने चेहरे का दीदार करा। हाँ, ये दुआ कर लें कि अल्लाह मैं जन्नत में साथ करना। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ये नहीं मिलते, लेकिन उनका दिल एक है। अल्लाह ताला से मूसा ने ये अगर फरमाइश कर ली तो कोई गैर हकीकी नहीं थी, ये तो फितरी सी बात है। बंदे से बात करो, फिर कहते हैं अच्छा जरा वो आवाज़ है ना, जरा वीडियो खोलना। तभी तो व्हाट्सएप वालों ने भी अब वीडियो कॉल शुरू कर दी। हम जब छोटे थे तो कहा करता थे लोग कि एक वक्त आएगा टेलीफोन में तस्वीर आएगी, तो हम कहते थे पागल बेवकूफ। अब देखिए हर बंदा वो काम करता दिखता है, और वो बाद वह घर के हुलिये में जब कोई आपकी तस्वीरें देखे तो चीख मार जाता है, कहते ठहरो कंघी कर लूं फिर वीडियो खोलती हूँ। तो जरा वीडियो खोलने से पहले अपने आप को शीशे में भी देख लें कि दूर बैठी माँ के दिल पर क्या बीतेगी। तो लेकिन आप देखिए, देखने को दिल करता है, कह लीजिए कि विजुअल का एक अपना ही मजा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जवाब मूसा को मायूस करने वाला था, काल लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। क्यों? हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया था, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने अल्लाह को देखा? तो क्या आयशा, वो तो एक नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? तो इन आंखों से दुनिया में मैं और आप अल्लाह को नहीं देख सकते। क्यों? क्या आप और मैं चमकते हुए सूरज को देख सकते हैं? आंखें बंद नहीं होती, तो ये रोशनी है। तो अल्लाह नूर समावाती वलर, वो तो इस रोशनी का मंबा है। तो अल्लाह को मैं और आप नहीं देख सकते, हमारी आंखों की इंटेंसिटी इतनी नहीं है। हाँ, क्यामत के दिन देखेंगे। दुआ किया करें अल्लाह हमें आखरत में अपने चेहरे का दीदार करवाए। वजूह हुई यौम इज़िन नादिरा इला रब्बिहा नासिरा, अल्लाह हमें अपने चेहरे का दीदार जरूर करवाए। ख्वाहिश रखें, दुआ करें और कोशिश करें। हाँ, जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रहे तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनाचे उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो इसे रेजा रेजा कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर गिर पड़े। कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? आज भी आप देखिए कि किसी को अपने सामने अचानक देखें तो बेहोश होने का खतरा होता है। अल्लाह सुबहान तआला के चेहरे का दीदार क्या होना था, सिर्फ उसकी तजल्ली देकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो बोले, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। फरमाया, मूसा मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया। کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو. اب کیا کر, ہائی لائٹ کیجئے گا, فخص ما تئی تک, بس جو کچھ تجھے دوں اس کو لے لو, وکم من الشاکرین, اور شکر بجا لا. ذرا سا موسیٰ سے اپنے اوپر آئیے, آپ کو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ دے رہا دے رہا نا, اس کو پکڑ لیجئے. تیسرا مقام ہے یہ سورۃ بقرہ میں, غالباً آیت 63 تھی, پھر 90 تھی یا 90 کے اراؤنڈ, اور یہ تیسرا موقع ہے فخص ما آتیتک. اسی لیے آپ کے آج کے پارے کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا, وہ ہیپی اینڈ پہ فلائٹ دکھا دوں گی, لیکن یہ سب کچھ میں آپ کو بیچ میں بتاتی جا رہی ہوں. جب کسی کام کا ارادہ کریں فخوز, ارادہ کر لیا نا اس قرآن کا تو پکڑ لیجئے, اس کو مضبوط پکڑنا ہے, ہر طرح کے حالات میں پکڑنا ہے, مجبوریوں میں, مشکلوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, ہر حال میں اس کو پکڑنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. دیکھیے ماں نے جب چھوٹے بچے کو پکڑا ہوتا ہے چھوڑ دیتی ہے, جھٹکا آئے گاڑی میں تو بچے کو چھوڑ دیتی ہے, گرنے لگے تو چھوڑ دیتی ہے بچے کو, وہ سب چھوڑ دے گی, بچے کو نہیں چھوڑے گی. اس قرآن کو اپنا نیو بورن بیبی بنا لے. خود بیمار ماں ہوتی ہے, بچے کے لیے رات بھر جاگتی ہے. زندگی کی کوئی مشکل, آزمائش, مصروفیت, اس کتاب کو ہاتھ سے نہ چھڑائے. کل آنے سے پہلے اگر مجبوری آ گئی, کہیں جانا پڑ گیا, کچھ ہو گیا, خوش ماں آتے ہی دکھ. آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس ڈیٹرمینیشن پہ آ جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. اب تورات میں کیا کچھ تھا, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی, اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوطی سے تھام لو. دوبارہ دیکھیے, کچے ہاتھوں میں اللہ یہ قرآن نہیں دیتا, کچے ہاتھوں والوں کے ہاتھوں سے یہ قرآن چھن جائے گا. اس کو اگر آپ میں پکڑنا چاہتے ہیں, میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں, چلے آپ تو ابھی لینے والے ہیں نا, کتنے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے چن لے؟ سب کا ہی کرتا ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں, اس پیکر خاکی میں دم پیدا کر. آپ اور میں اگر اللہ کے دین کے لیے سنجیدہ ہیں, تو پہلے اس چھوٹے سے وجود کو آئرن نوکس میں بدلیے. بات بات پہ روٹھنے والے, بات بات پہ ناراض ہونے والے, بات بات پہ بدگمان ہونے والے اس کتاب کو نہیں تھام سکتے. جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ کرسٹل کا بول میں نہیں دوں گی ہر ایک کو, کیونکہ وہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کا دین بڑا قیمتی ہے, اللہ اس سے پہلے مضبوط کرنا چاہتا ہے. آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ مضبوطی دینا چاہتا ہے. آج لینے میں آپ جتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں نا, کل دینے میں بھی اتنے ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے. اور میرا پچھلے 20 سال کا ایکسپیرینس میں آپ کو بتا دوں, اچھے اسٹوڈنٹس کل اچھے ہیلپر بنے. آج بھی اللہ نے ہمیں, میں کہتی ہوں, خیر کثیر سے نوازا ہوا ہے. میں ان سارے اپنے ساتھیوں کو آن لائن, آن سائٹ, جو دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر کام کر رہے ہیں دین کا اور ہمارے ساتھ ہیں اور ایڈوائزز کو لیتے ہیں, انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہیں, میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے. اور آج بھی ہمارے ایڈمنز میں میجورٹی ایسی ہے, ہر نئے کورس میں خود بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ٹیسٹوں کے ساتھ ٹیسٹ دیتے ہیں, پیپروں کے ساتھ پیپر دیتے ہیں. اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں تو دہرانا ہے, کیوں کہ اچھے اسٹوڈنٹ تھے تبھی تو آج اچھے ساتھی بنے ہوئے. تو آج آپ خود نہیں آ رہے وقت پہ, تو کل ایز اے ایڈمن آئیں گے, کبھی نہیں آئیں گے. اور ازما کے دیکھ لیجئے, جو اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں وقت پہ آتا, وہ ٹیچر لائف میں بھی نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے تو یہ آپ سب کو میں کہہ رہی ہوں, اس وقت آپ کے اپنے لیے فیصلے کرنے کے دن ہے. جس درجے پہ آپ اس وقت قرآن لے رہے ہیں, انشاءاللہ کل اسی درجے پہ دیں گے. اگر آج انجوائے کر رہے ہیں نا, تو کل انشاءاللہ میری طرح آپ اس کو انجوائے بہت کریں گے. میں آج بھی جب پڑھانے بیٹھتی ہوں نا, کسی بھی جگہ جہاں بھی اللہ موقع دیتا ہے, میں وہ پرانے کلاس روم میں پہنچ جاتی ہوں جہاں میں لینے والوں میں بیٹھی تھی, اور میں ابھی بھی بیٹھتی ہوں. میں نے کبھی سلسلے کو چھوڑا نہیں ہے. آپ تو یہ 2-2.5 گھنٹے میں ایک پارا سنتے ہیں نا, میں میرا خیال ہے اس کو 10 گھنٹے تیار کرتی ہوں. کیوں کہ میں نہیں لوں گی تو میں آپ کو کیسے دوں گی. تو زیادہ کوشش کیا کریں, مضبوطی سے پکڑیں, کل سے ایک چیز ذہن میں رکھیں. اور ماشاءاللہ ابھی میری آنکھوں میں کوئی 20-30% چہرے فکس ہو گئے ہیں, الحمدللہ. آپ میں سے 90% لوگ روز ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی چھٹی نہیں کی, ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ, انشاءاللہ آپ کے آخری دن میں آپ کی کچھ چیزیں ہم دوسروں سے شیئر کریں گے. انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی, یہ ہمیشہ وقت پہ آئیں. یہ کچھ کیوں کہ آپ کی یہ ڈیڈیکیشن آپ کو زندگی میں آگے لے کر جائے گی. تو ہمیشہ جمیں, کچی چیز کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ کرسی ڈھیلی ہوتی, گر رہی ہوتی, میں کبھی نہ اس پہ بیٹھتی. یہ ٹیبل کمزور ہوتا, میں اس پہ لیپ ٹاپ کبھی نہ رکھتی. تو آج کے پورے پارے میں جمیے. इन्नल लज़ीना कालू रब्बुना, कह दिए अब जम जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कि इन हदायतों को मजबूत हाथों से संभालें। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये तर्जमा सुन रहे हैं जो मैं पढ़ती हूँ, और भी तर्जमे मेरे पास भी होते हैं, वो खूबसूरती नहीं है जो इसमें है। इसमें अगर सिर्फ तर्जमा सुनते हैं ना, उसमें भी मजा आ रहा होता है, क्योंकि आसान है। इसके तर्जमे का स्टाइल स्पीकिंग स्टाइल है, जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, वो लिखा हुआ है। आम तर्जमों में राइटिंग स्टाइल होता है। अगर अभी तक आपने ये कुरान नहीं लिया, ले लीजिए, ये आपका इस साल का रमजान का गिफ्ट होगा, सारी जिंदगी चलेगा। कल से अगर आप वो कुरान खोले जो मैं बोल रही हूँ, आपको ऐसे लगेगा जैसे बातें हो रही हैं। इस तर्जमे को चूज करने की वाहिद वजह ये थी कि ये स्पीकिंग स्टाइल है बोलने वाला। अब मेरी बोली बातें आप कल जाके लिख के ले आए ना, आप कहते ये नोट्स दे के किसी को दिखा देती हूँ, ये पढ़ लो, कुछ मजा नहीं आएगा। आम तर्जमों में राइटिंग स्टाइल होता है, ये स्पीकिंग स्टाइल है। इसकी खूबी ही ये है, इसीलिए हर साल इसको हमेशा चूज करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों को सुनते हुए हमें ऐसे महसूस हो कि हमारा रब हमसे बात कर रहा है। क्या कहा? इन हिदायत को मजबूत हाथों से संभाल लो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसके बेहतर मफहूम की पैरवी करें, यानी इसको चूमो नहीं, चाटो नहीं, बल्कि अब इसके ऊपर अमल भी करें। अन करीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखा दूंगा, मैं अपनी निशानियों से इन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन पर बड़े बनते हैं, वो ख्वाह अपनी कोई निशानी देख लें कभी इस पर ईमान नहीं लाएंगे। ये भी बड़ी इंतकामी बात है। अल्लाह कहता है जिसके दिल में किबर होगा ना, मैं उसको इन आयतों से मोहब्बत नहीं दूंगा, क्योंकि वो जमीन पे जो बड़े बने हैं, हुब्बे जा हुब्बे माल, वही पारे का थीम सामने रखिए। तो कई ऐसे बदनसीब होते हैं, हर मुमकिन तरीका कर लें, उनको आयतें नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं नहीं, हम इसके बगैर ही अच्छे हैं। उनका हाल क्या होता है? अल्लाह अकबर। वो ख्वाह कोई निशानी भी देख लें कभी इस पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर सीधा रास्ता इनके सामने आए तो इसे इख्तियार न करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो इस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को छुटलाया और इनसे बेपरवाही बरतते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने भी छुटलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, इसके सारे आमाल जाया हो गए। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जजा पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें। ये है जी आपकी आयत तदब्बुर। थोड़ा सा स्क्रीन को देखते हुए मेरी बातों को सुनते जाइए। आयत 146 हमारे इस पारे की थीम आयत है। हम टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं। कई लोगों का टाइम क्यों मैनेज नहीं हो पाता? क्या हम सबीलुल रुश्द और सबीलुल गई के बीच में लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं? कभी अल्लाह की पसंद के बनते हैं, कभी नहीं। इधर एक इमेजिनेशन दिया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे लोगों को ये आयत बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। एक शख्स सीधा हिदायत के रास्ते पे चलता है, क्या उसके साथ होने लगता है? देखिए, ये सुर्ख लाइन है और एक सब्ज लाइन है। अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ लोग हैं सीधे और दूसरे उलट रास्ते के बीच में घूमते रहते हैं। बेसिकली जो हम कहते हैं ना सिराते मुस्तकीम, वो सीधी नहीं है, वो क्रिस क्रॉस है। हिदायत और गुमराही एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती है। अब एक शख्स है वो सब्ज लाइन पे चल रहा है, वो हिदायत के रास्ते पे था। मसलन आप अपने ऊपर लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। हमने ये कुरान का सफर शुरू किया, ये सबस लाइन है, आप इस पे चलते जाएं, नीचे जाएं, वो देखें एंड पे जन्नत होगी। दूसरा शख्स है सबीलुल रुश्द, सबीलुल गई, गलत कामों पे, गुमराहियों के रस्तों पे, उस पे कुछ चलता जाएगा तो एंड पे वो जहन्नुम है। अब होता क्या है? ये बड़ा खतरनाक मामला है। आप देखिए, शुरू से दिखाएं, ये खुद ब खुद मूव होता है ना, तो वहां उसको रोक लें। एक शख्स सबीलुल रुश्द पे चला, अब आप कहते हैं हम सिक्योर है, वो देखिए एक पर्सन ए है, ये नीले रंग के डॉट्स, इधर रुक जाए। हिदायत और गुमराही कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस। ये जो राउंड अबाउट बनता है ना, आप क्या कहते हैं इसको फ्रेंच में? जो मर्जी कहे, मुझे नहीं आना है। अब देखिए ये राउंड अबाउट है ना, ये खतरनाक है। सीधा हिदायत के रास्ते पे चलता चलता बंदा, उसको पता ही नहीं चलता। आप वो ब्लू लेन को फॉलो करें, नहीं ब्लू को देखिए, उसको आना तो सबज पे था ना, वो सुरख पे आ गया। वो शख्स पता ही नहीं उसको चला, राउंड अबाउट से वो गलत रास्ते पे चढ़ गया। और ये राउंड अबाउट क्या है? ये हमारी जिंदगी का कोई अचानक मामला, हम कुरान सीख रहे हैं, अचानक कोई काम आ गया, पाकिस्तान चले गए, उम्रे पे चले गए, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा पैदा होने लग गया, वो दिन हमें उस हिदायत की लाइन से उतार कर एक ऐसे रास्ते पे उतारते हैं। अब देखिए वो ब्लू लेन वाला अब किधर पहुंच गया, रेड लेन पे आ गए। ये बहुत खतरनाक है। हिदायत की गाड़ी में बैठकर बंदा लम्हा लम्हा अपने आप को चेक करता रहे कि क्या मैं ठीक रोड पे हूं, ये है हदीना सिरातल मुस्तकीम। इसीलिए सांबर होते थे। अब देखिए कोई बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले जंक्शन से बच के आ गया, थोड़ी देर के बाद ग्रीन पे उसको लाइए नीचे, अब थोड़ी देर बाद एक दूसरा जंक्शन आ गया। इन 30 पारों के सफर में मैं कहती हूँ 30 से ज्यादा माइलेज स्टोन आते हैं, सिर्फ वो एंड तक स्टूडेंट्स पहुंचते हैं जो हर राउंड अबाउट पे आंखें खोल के रहते हैं। देखो ये अच्छी बात मुझे निकाल देगी दीन से, ये छुट्टी मुझे मुश्किल पड़ेगी, ये इधर होगा, तो हमेशा खतरे में। ये राउंड अबाउट ऐसे बंदों के लिए एक आजमाइश होता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब दूसरी देखिए, एक शख्स गलत काम कर रहा है, अब ये आपके मेरे किरदार के लिए कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं या आपकी इस दावत पे अभी तक कुरान सुनने नहीं आए, आप उनको कभी बुरा ना कहें। क्यों? वो रेड लाइट पे थे, उनका भी जंक्शन, यहाँ रुक जाइए। ये जंक्शन क्या है? एक इंसान भगदड़ दुनिया में भाग रहा होता है, हुब्बे जा हुब्बे माल, कोई अच्छी दोस्त मिल गई आप जैसी, चलो ना मैं तुम्हें लेके चलूंगी, नहीं नहीं मैं आ जाऊंगी, नहीं नहीं मैं आज तुम्हें लेके जाऊंगी, आप उसको लेके इधर आ गए, कुरान सुना ऐसा दिल पे उतरा, वो देखिए वो रेड लाइन से उतर कर ग्रीन लाइट में पहुंच गया, और किधर पहुंच जाएगा नीचे एंड पे? इंशाल्लाह जन्नत में पहुंचेगा। ये जो राउंड अबाउट्स आते हैं ना, जंक्शंस क्रॉस, ये गुमराहियों पे पड़े हुए लोगों के लिए नेमत है और हिदायत पे जाने वालों की आजमाइश है। आप इसी से समझ लें कि ज्यादा बड़ा खतरे में कौन है। इसको बाद में आप आराम से देखिएगा तो बहुत इंजॉय करेंगे। आपको मुझे इस हिकायत पे गौर करते हुए अपने हर नेकी के अमल को चेक करना है। हमें पता भी नहीं चलता, अगर ये ब्लू और ग्रीन दो रंगों की लाइनें ना की होती ना, तो पता ही ना चल रहा होता कहाँ पहुंच गए हैं। तो जैसे रोड पे चलते हुए इधर से उधर घूमते हैं, इसी तरह से। इसलिए तो ये देखिए शीट में आपके सामने लिखा हुआ है, इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि आज की क्या आयत है। यही आपने, मैंने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी जिंदगी पे लेना है। हर रात सोने से पहले पूछे, आज कितनी दफा सबीलुर रुश्द से उतर कर सबीलुल गई पे चली गई, और आज कितनों के सबीलुल गई से उतर कर अल्हम्दुलिल्लाह सबीलुर रुश्द पे आने का जरिया बनी। फिर उसके बाद हदीस देख लीजिए, आज की इसी से मुतल्लिक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आमाल में जल्दी करो, अन करीब फितने आने वाले हैं जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे, सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर, दुनिया के मामूली सामान के बदले अपना ईमान बेच डालेगा। क्या ये वक्त नहीं आया हुआ? सुबह करते हैं नमाज और कुरान के एक सफ़े से, और सारा दिन पता नहीं क्या काम करके रात को किस कुफर पे सोते हैं। तो ये हदीस आपको मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। फितनों से बचने का एक ही तरीका है कि नेकियों में जल्दी करो। आगे देखिए नेक्स्ट, आज की दुआ सूरत अल अराफ आयत 47, आप पढ़िए मेरे साथ। रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह ए हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना कीजिए। अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इंसान गलत काम करने वालों के साथ लग जाता है। दूसरी दुआ जो भी हमने सीखी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जादूगरों से, आयत 126 सूरत अल अराफ, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम वतवफ़ना मुस्लिमीन, ऐ हमारे रब हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल, कही आमीन। आज हर मुसलमान को ये दुआ बहुत पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे कदम जमा दे। आज की टाइम मैनेजमेंट टिप, फैसला करें और जम जाएं। किस चीज़ का फैसला? अच्छे काम का फैसला। रिलक्टेंट होना छोड़ दें, फैसला कर लिया अब उसमें क्या रह गया बात। तो इंशाल्लाह इस पे अपनी जिंदगी के फैसलों को परखते जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है? टाइम वेस्टर, फालतू और ला यानी कामों में वक्त जाया ना करें। आज से कल तक 24 घंटे में आप अपने वर्क को मॉनिटर करें, क्या फालतू और क्या ला यानी है उसको निकालते जाएं। आप देखेंगे कि वक्त में बहुत सारी बरकत होगी, और काबिले तकलीद मिसाल फिरौन के जादूगर कि जिनके सामने हक आया तो उन्होंने इस हक को पहचान लिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हिदायत पर जमा दे और कभी भी हमारी ज़िंदगी में शक ना आए। लिख लें, बड़ा बड़ा लिख लें, सबीलुर रुश्द से सबसे ज्यादा लोगों को जो चीज उतारती है ना वो शक है। ये राउंड अबाउट शक का होता है। और शैतान इब्लीस ने, जो पीछे भी पढ़ा है सूरत अल अराफ में और इंशाल्लाह आगे सूरह बनी इसराइल में और डिटेल्स पढ़ेंगे, लोगों को शक पैदा करके हिदायत के रास्ते से उतार दिया। आप तलबीस इब्लीस बुक का नाम लिख लें, इब्ने जौजी रहमहुल्ला की है, कभी आप उसको पढ़ें तो आपको लगेगा कि आपके साथ साथ ही शैतान फिर रहा है। कैसे किसको बहकाता है, आबिदों को, जाहिदों को, कारियों को, हाफिजों को, गुनाहगारों को, म्यूजिशियंस को, हर फील्ड ऑफ लाइफ के पर्सन को शैतान मुख्तलिफ तरीके से लाता है। हिदायत के रास्ते पे आए हुए, सबीलुर रुश्द पे आए हुए को शैतान शक के रास्ते से लाता है। मसलन कल आपको शक डाल दे, शायद ना हो, पेट्रोल की हड़ताल हो गई है, शायद इधर क्लास हो ही ना, शक डाल देगा। शक डाल दे आपको कि जो सुनना है अमल तो होना कोई नहीं छोड़े, आपको शक डाल दे कि आज आपकी तबीयत खराब है, शक डाल देगा आपके दिल में कि मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती, आप नहीं आएंगे। इस शक के कीड़े को दिल से निकाले और ये दुआ पढ़ा करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादे हदैतना, क्योंकि जो एक शक का शिकार होता है ना वो फिर अकेला नहीं रहता, ये कंटेजियस है, जिसको आप क्या कहते हैं, मुतद्दी है एक से दूसरे में। शक आ जाए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर अल्लाह से रोके दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बस जिस वक्त आपने उस शक को साथ बैठे से शेयर कर दिया ना, वो आपने जरासीम अपने उधर भी डाल दिए, खुद तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे सब। शैतान इस तरह दीन के रास्तों से लोगों को हटाता है, अच्छे भले हिदायत की तरफ बुलाने वाले लोगों को रोकने वाले बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की इसलाह फरमा दे। आगे फिर देखिए अब कौम के करतूत, पीछे वो एक जुमला याद है आपको कि अल्लाह ने कहा था मूसा से कि तुम्हें जब दुनिया में इक्तदार देगा तो फिर देखेगा तुम क्या करते हो। अब उसके अमली तस्वीर बने हुए बनी इसराइल हम सब के लिए मिसाल है।